जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिवराज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद की जय। श्री श्री राधिका रमण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री लद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तो आज श्री अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस बहुत ही पवित्र दिवस है। तो आज के दिवस पर हम कुछ सुनेंगे चैतन्य भागवत से। अद्वैताचार्य के संबंध में बहुत घटनाएं हैं बहुत लीलाएं हैं बहुत विस्तृत चरित्र है भगवान श्री चैतन्य के साथ में। तो एक अध्याय हम सुनेंगे मध्य लीला का छठा अध्याय है। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। जगत जीवन श्री गौरचंद्र के जय हो जय हो। आप अपने चरण अपने दोनों चरणों को मेरे हृदय में प्रदान करें। श्री विश्वंभर की जय हो। गौरचंद्र के समस्त किंकरों की जय हो जय हो। परमानंदपुरी के जीवन प्रभु की जय हो। स्वरूप दामोदर के प्राणधन की जय हो। रूप सनातन के प्रिय श्री गौरांग की जय हो। जगदीश गोपीनाथ के हृदय स्वरूप गौर प्रभु की जय हो। द्वारपाल गोविंद के नाथ की जय हो। हे प्रभु जीवों के प्रति शुभ दृष्टि कीजिए। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र दान दे हृदय तुम्हारे पद द्वंद जय जय जगत मंगल विश्वंभर जय जय जत गौर चंद्र रे किंकर। अब ये घटना उस समय की है जब श्री चैतन्य गया की यात्रा से होके आ गए और अब नवद्वीप में खूब कीर्तन हो रहा है और भक्तों का आनंद बढ़ता जा रहा है। अद्वैताचार्य ने जिनको बुलाने के लिए अनेक प्रार्थनाएं की बहुत उपवास किए और वही अद्वैताचार्य अब चले गए कहाँ शांतिपुर चले गए। उनकी भावना यह है कि अगर ये मेरे बुलाने से आए हैं तब ये मुझे बुलाएं। मैंने इनको इतना बुलाया हा? ये प्रेम का जो है ये इस तरह का होता है, तो मैंने इनको इतना बुलाया अगर सचमुच ये मेरे बुलाने से आए हैं तो अब ये मुझे बुलाएंगे, इसलिए शांतिपुर चले गए। इनका एक घर शांतिपुर में है, एक घर नवदीप में है, है ना, तो चले गए। तो परीक्षा कर रहे हैं भगवान की है? कि अगर मेरे बुलाने से आए हैं तो अब मुझे बुलाएं, है ना। तो इस प्रकार नित्यानंद के साथ गौरचंद्र भक्तों को लेकर संकीर्तन आनंद करते हैं। अब जिस प्रकार अद्वैत प्रभु का आगमन हुआ और उन्हें प्रभु ने दर्शन दिया उस प्रसंग को सुनिए। एकाने सोना अद्वैतेर आगमन मध्य खंडे जैन मत हैला दर्शन। एक दिन श्री महाप्रभु ईश्वर के आवेश में है, तो कभी भगवान कीर्तन के बीच में क्या हो जाते हैं, ईश्वर के आवेश में आ जाते हैं। ईश्वर के भाव में तो ईश्वर की तरह बात करते हैं, अब वो जो है मतलब इस तरह से बोलते हैं कि मैं तो संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ। और जब भक्त के भाव में होते हैं तो भक्तों के चरण छूते हैं और उनकी चरणों की धूल लेते हैं। अब ईश्वर भाव में, ईश्वर भाव में पूर्ण आनंद में मग्न होकर रमाई पंडित को आज्ञा दी। रमाई पंडित कौन है, श्रीवास पंडित के भाई, छोटे भाई, है ना। तो रमाई पंडित को आज्ञा दी, तो इसका मतलब श्रीवास पंडित ही घर में है, श्रीवास पंडित घर में है। तो कीर्तन के बीच में एकदम से कीर्तन बंद कर दिया और ईश्वर के आवेश में रमाई पंडित को आज्ञा दी। रमाई नहीं तो रमाई को ऐसे थोड़ी बोलेंगे, श्रीवास पंडित के छोटे भाई हैं तो उनके पिता के समान है, लेकिन ईश्वर के आवेश में रमाई, रमाई तुम अद्वैत के घर जाओ। अद्वैत भी उनको भी अद्वैत तो वे भी गुरु के समान है अद्वैताचार्य, लेकिन अद्वैत के घर जाओ, उनको मेरे आत्म प्रकाश का संवाद सुनाओ। उनसे कहना जिनको प्रकट करने के लिए तुमने इतनी आराधना की, जिनके लिए तुम इतने रोए और तुमने इतने व्रत उपवास किए, वे तुम्हारे प्रभु आकर प्रकट हो गए हैं, जाओ संदेश सुनाओ। वे अपना भक्ति योग लुटाने के लिए आए हैं, आप शीघ्र ही वहां जाकर आनंद में विशेष स्तुति करो, पूजा करो, नृत्य करो। अब आपको आज्ञा है, है? उनसे एकांत में नित्यानंद का आगमन भी बताना कि नित्यानंद भी आ गए हैं और जो कुछ तुमने देखा है सो सब कहना। उनको मेरी पूजा की सामग्री और उपहार लेकर स्त्री से तुरंत ही आने के लिए कहो, स्त्री के साथ आओ और मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, स्तुति करो, भगवान ऐसा कह रहे हैं। हमारे पूजा रे सज्ज उपहार लैया झाट आसी बारे बोल शस्त्री के हैया। तो श्रीवास के छोटे भाई इनको बोलते हैं श्रीवास अनुज, रामाई पंडित को श्रीवास अनुज। श्रीवास के छोटे भाई रामाई पंडित प्रभु की आज्ञा के सूरोधार करके उसी समय हरि हरि स्मरण करते हुए चल पड़े। रामाई आनंद में बेहल होकर चले जा रहे हैं, तो कहां से कहां जा रहे हैं रामाई पंडित, नवदीप से शांतिपुर जा रहे हैं। मार्ग का भी ध्यान नहीं रहता था, इतना आनंद है भगवान की सेवा का, भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई है। श्री चैतन्य की आज्ञा को लेकर वे वहां पहुंचे। रमाई पंडित ने अद्वैताचार्य को नमस्कार किया परंतु आनंद में पूर्ण होकर के होने से कुछ बोल नहीं पाए, इतना आनंद हो रहा है तो हर्ष के कारण कुछ बोल नहीं पाए अद्वैताचार्य को। और अद्वैत प्रभु भक्तियों के प्रभाव से सर्वज्ञ है, भक्तिया माम अभिजान आती है ना, तो भक्ति के द्वारा भगवान को जान लेता है। कैसे जानता है, भक्तियाम अभिजानती माम यावान यश्चास्मि तत्वतः, कि मैं जो हूँ जैसा हूँ तत्व से जान लेता है। तो भक्तियों के प्रभाव से सर्वज्ञ हैं, अतएव वे पहले समझ गए, पहले ही समझ गए कि मेरे लिए प्रभु की आज्ञा आई है। रमाई पंडित बोल नहीं पा रहे हैं, अद्वैताचार्य समझ गए, क्या समझ गए कि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी, और वही चाहते थे कि अगर सेवक, अगर मैं उनका सेवक हूं तो मुझे बुलाएंगे, आज्ञा देंगे कि मेरी पूजा करो। तो ये जो है सेवक का जो है ये आनंद होता है कि भगवान आज्ञा दें, मेरी पूजा करो, मेरी स्तुति करो, मुझे नमस्कार करो, है ना। जो ईर्ष्यालु होता है वो कहता है मुझे क्यों ऐसा बोलते हैं कि मेरी पूजा करो, है बड़ा घमंड, बहुत घमंड है, है ना। लेकिन सेवक को बहुत आनंद आता है कि भगवान मुझे बोल रहे हैं, मुझे अपनी सेवा का अधिकार दे रहे हैं, मेरी पूजा का अधिकार दे रहे हैं, मैं नमस्कार करूं, है ना, तो सौभाग्य कि भगवान ऐसा कह रहे हैं मुझे नमस्कार करूं, है ना। तो अद्वैताचार्य को जो है बहुत सुख हुआ है कि मैं उनका सच्चा सेवक हूं, इसीलिए उन्होंने सच्चा सेवक मान करके मुझे सच्चा सेवक समझा है, इसलिए भगवान ऐसा दे रहे ऐसा बोल रहे हैं। तो रमाए को देखकर हंसकर बोले, मालूम होता है मुझको लाने के लिए तुम्हें आज्ञा हुई है। रमाए पंडित बोल नहीं पा रहे, इतना हर्ष हो रहा है, इतना हर्ष हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो अद्वैताचार्य बोले, मालूम होता है कि मुझे लाने के लिए तुम्हें आज्ञा हुई है। रमाए पंडित हाथ जोड़कर बोले, आप तो सब जान ही गए हैं, अतएव चलिए शीघ्र ही। तब आचार्य आनंद में बेहबल हो उठे, उनका शरीर कहाँ है इसका भी ज्ञान उन्हें नहीं रहा। कितना प्रेम, सोचिए। अब वो कह रहे हैं कि चलो जल्दी चलें, चलें कैसे, इतने आनंद में उनका शरीर कहीं ज्ञान नहीं है। अद्वैत की गहन चरित्र को कौन समझ सकता है, जानते ही भी अनजान किसी अनेक बातें कहने लगे। वो बोले, मनुष्यों के भीतर ईश्वर कहाँ से आ गए। अभी जो है वो इस प्रकार से हंसी मजाक भी करते हैं, तो भगवान के साथ उनको हंसी मजाक करने का भी अधिकार है। तो रमेश से बोले, मनुष्य में ईश्वर कहाँ से आ गए, मनुष्य में ईश्वर कहाँ से आ गए, नदियों में अवतार होना किस शास्त्र में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है कि नदियों में अवतार है भगवान का, है ना। लेकिन शास्त्र में अगर नहीं भी लिखा है तो भगवान चाहे तो ले सकते हैं अवतार, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि शास्त्र में लिखा है तभी भगवान आएंगे, भगवान तो बंधे नहीं है। और अद्वैताचार्य के बुलाने से आए हैं, तो अद्वैताचार्य ही एकमात्र कारण है कि भगवान आए हैं। तो अद्वैताचार्य अब जो है ऐसे उल्टी बातें कर रहे हैं, मेरी भक्ति, मेरा अध्यात्म, वैराग्य और ज्ञान तेरा भाई श्रीवास भली प्रकार सब जानता है। श्री अद्वैत के चरित्र को रमाई पंडित बड़ी भली भांति जानते थे। तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत घमंड है, मेरी भक्ति को, मेरे ज्ञान को तो तुम्हारा भाई जानता है, लेकिन वास्तव में उनके अंदर वो घमंड नहीं है, वो ऊपर से दिखा रहे हैं। तो कभी कभी घमंडी होने का भी जो है अभिनय किया जाता है, जब घमंड नहीं होता तो भी अभिनय किया जाता है। तो अद्वैताचार्य जो है घमंड का भी अभिनय कर रहे हैं, है ना। ऐसा श्री अद्वैत के चरित्र को रमाई पंडित जानते थे, उत्तर कुछ नहीं देकर मन ही मन हंस रहे हैं। अद्वैताचार्य के ऐसे जो चरित्र हैं अगाध हैं, सत्कर्मी उन्हें कुछ समझ सकते हैं, कुकर्मी दोष दृष्टि करेंगे, कुकर्मी कहेंगे जिनका बुरे कर्म है तो उनको समझ में नहीं आएगा, वो कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, तो बहुत घमंड है, है ना। अतएव उनके लिए बाधाकारी हैं अद्वैताचार्य की ये बातें जो है उनके लिए बाधाकारी हैं, और सुखकारी हैं सुकर्मियों के लिए, सत्कर्मियों के लिए सुखकारी हैं। अद्वैत बोल रमाए पंडित, कहो तो सही किस कारण से अचानक तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। अभी तो बोल दिया कि लगता है मुझे आज्ञा हुई है, लेकिन सुनना चाहते हैं बार बार, भगवान की आज्ञा को सुनना चाहते हैं, तो इसका जो है एक बहुत उनको आनंद है। कहते हैं किस कारण से आए हो, बोलो किस कारण से किस कारण से अचानक आगमन हुआ है, अचानक कैसे आए। रमाई पंडित समझ गए आचार्य का चित्त स्थिर हुआ है, अतएव रो करके बोले, अद्वैतेर चरित्र रामाई भाल जाने, उत्तर न करे के चूहा से माने माने, हे मत अद्वैतेर चरित्र आगाध है, सुकृति रे भाल दुष्कृति रे कार्य बाध है। हे आचार्य, कौन बोले, रमाई पंडित, हे आचार्य, जिन प्रभु को प्रकट करने के लिए आपने अनवरत आंसू बहाए, कैसे अनवरत निरंतर आंसू बहाए, आराधना की और असंख्य व्रत उपवास किए, वही प्रभु आपके लिए प्रकट हो गए हैं। भगवान के अवतार के तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण कौन है, अद्वैताचार्य तुम्हारे कारण आपके लिए प्रकट हुए हैं, अपना भक्ति योग लौटाने के लिए ही उनका आगमन हुआ है। अद्वैताचार्य ने यही प्रार्थना की थी कि कितने पाखंडी हैं ये दुष्ट लोग हैं, जो भक्ति की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, है ना, और कृष्ण ही इनको भक्त बना सकते हैं, और नहीं तो मैं तो अपनी चार भुजाएं प्रकट करके इनका संहार ही कर दूंगा, मेरा तो एक ही काम है संहार करने का। कृष्ण अगर आएंगे तो इनको भक्त बना सकते हैं। तो भक्ति को लुटाने के लिए उनका आगमन हुआ है और आपके लिए वहां चलकर नृत्य स्तुति गान करने की आज्ञा हुई है कि आपको तो केवल यही करना है, नृत्य करो, स्तुति करो, गान करो, बाकी काम तो वो करेंगे। विधि के अनुसार पूजा की सब सामग्री लेकर स्त्री सहित चलिए, यही प्रभु की आज्ञा है। महाप्रभु के द्वितीय देह स्वरूप नित्यानंद का आगमन हो गया है। दूसरे देह मतलब पहले विस्तार बलराम जी हैं कृष्ण के, तो नित्यानंद है, तो दूसरे स्वरूप हैं, नित्यानंद का आगमन हुआ है। मैं क्या कहूँ, आप तो उनको जानते हैं, मेरे भाग्य में होगा तो आप सबके एकत्र दर्शन करूँगा, तब मेरा भाग्य होगा तो आप जब मिल जाएंगे उनके साथ तो और इसका आनंद है। जब रमाई के मुख से इतनी बातें सुनी तो आचार्य देव भुजाएं उठाकर रोने लगे। अब देखो रो रहे हैं, अभी उठ नहीं रहे हैं, अभी चल नहीं रहे हैं, अब रोने लगे। रोते रोते आनंद में बेसुध हो गए, ये देखकर सब लोग विस्मित हो गए। थोड़ी देर में सचेत होकर हुंकार करने लगे और अपने प्रभु को ले आया हूँ, ले आया हूँ, इस तरह से कहने लगे, मेरे लिए प्रभु अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर आ गए, ऐसा कहकर रोते हुए पृथ्वी में गिर गए। तो मेरे लिए आए है ना, तो मैं मेरा क्या अधिकार है उनको बुलाने का, मेरे लिए आए प्रभु तो उनकी कितनी कृपा है मेरे ऊपर, तो कृपा को सोच करके मूर्छित हो गए, कितनी कृपा उनकी। ऐसा कहकर रोते हुए पृथ्वी पर गिर गए और पतिव्रता अद्वैत पत्नी सीता देवी प्रभु के प्रकाश का समाचार सुनकर आनंद में रोने लगे। सीता ठकुरानी उनकी पत्नी है ना, तो वो कम नहीं है भक्ति में। आचार्य मूर्छित हो गए, सीता ठकुरानी भी रोने लगे आनंद में। अद्वैत प्रभु का पुत्र अच्युतानंद जो निपट बालक था वो भी निरंतर रोने लगा, उसको भी प्रेम है ना, तो पूरा घर पूरा परिवार जो है ना प्रेम से भरा हुआ है। अद्वैताचार्य अपनी पत्नी पुत्र के साथ रो रहे हैं, उनको घेर कर चारों ओर सेवक लोग भी रोने लगे, सेवकों को भी वो प्रेम प्राप्त हुआ है ना, तो सेवक भी रोने लगे। कोई कहीं और कोई कहीं पड़ा रो रहा था, किसी को अपने पराये के शुद्ध नहीं है। इस प्रकार अद्वैताचार्य का घर प्रेममय हो गया। अद्वैताचार्य स्थिर होना चाहते हैं परंतु हो नहीं पाते, भावावेश में अपने शरीर को लगातार हिला रहे हैं, पड़े पड़े हिला रहे हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं, इतना उनका जो है प्रेम का वेग है। रामाई रे मुखे जाबे एते कैसो नीला, ताखानी तो लिया बाहु कांदी लेला गीला, कांदी यहाँ इला मूर्छा आनंद सहित, देखी ऐसा कल गण हैया विस्मित। श्री अद्वैत ने रामाई पंडित से पूछा, प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा था। उनको बार बार सुनने की इच्छा होती है भगवान की आज्ञा, मेरे लिए क्या कहा था प्रभु ने, मेरे लिए क्या कहा था है ना, तो वो ऐसा अमृत है भगवान की आज्ञा में, ऐसा अमृत है कि जितना सुने उतना उसका रस मिलता है। प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा था, उसने उत्तर दिया शीघ्र चले आने के लिए। अद्वैत बोले, सुनो रमाई पंडित, वे मेरे प्रभु हैं, इस बात का विश्वास मुझे तभी होगा जब वे अपना ऐश्वर्य मुझे दिखाएंगे, अपना ऐश्वर्य दिखाएं, क्योंकि भगवान तो मनुष्य लीला करते हैं तो कोई पहचान नहीं पाते हैं, उनकी इच्छा है अपना ऐश्वर्य दिखाएं मुझे, अपना ऐश्वर्य दिखाएं, मतलब कैसे सब देवता लोग उनको स्तुति करें, प्रणाम करें, शेष जी भी उनकी सेवा में, नारद जी, गंधर्व, देवता सब उनकी सेवा में, तो मैं उनका ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है उनका ऐश्वर्य देखने की इच्छा है। और एक तो ये इच्छा है मेरी कि अपना ऐश्वर्य दिखाएं, और दूसरी इच्छा क्या है, अपने चरण उठाकर मेरे मस्तक पर रखें, मेरी इच्छा ये क्या, अपने चरण उठाकर मेरे मस्तक पर रखें है ना, तो मैं उनके चरण ना पकड़ूं बल्कि स्वयं ही अपने चरण उठा करके मेरे मस्तक पर रखें, ये मेरी इच्छा है सेवक की, ये भावना अद्वैताचार्य चाहते हैं ना, हृदय में ये जो है उत्कट तीव्र कामना है कि अपना ऐश्वर्य दिखलाएं और अपने चरण, नहीं तो मनुष्य भाव में भगवान तो जो है उनके पुत्र जैसे हैं या शिष्य जैसे हैं, ये तो पिता के समान है, गुरु के समान, तो कैसे भगवान अपने चरण रखेंगे, नहीं मुझे ईश्वर भाव में अपना दर्शन दें और जो है अपना चरण मेरे सिर में रखें, उनकी तीव्र कामना। तब मैं जानूंगा कि वे मेरे प्राणनाथ हैं, तब मैं जानूंगा मेरे प्राणनाथ है, मेरे बुलाने से आए हैं, भगवान हैं, परमेश्वर हैं, तब मैं जानूंगा। ये मैं तुमसे सत्य दृढ़ सत्य कहता हूँ। रमाई पंडित बोले, प्रभु इस विषय में मैं क्या कहूँ, हाँ मेरे भाग्य में होगा तो ये मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा। तो मेरा भी सौभाग्य, अगर ऐसा आपकी इच्छा के अनुसार होगा तो मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा। जो आपकी इच्छा है प्रभु, उनकी भी वही इच्छा है। भगवान अपने सेवक के बस में रहते हैं, भगवान अपने सेवक के अधीन रहते हैं, है ना। तो आपकी इच्छा है तो उनकी भी इच्छा है। ये अवतार ही प्रभु आपके लिए हुआ है। कौन कह रहे हैं? रमाई पंडित। ये अवतार आपके ही लिए हुआ है। रमाई पंडित के वचनों से अद्वैत संतुष्ट हुए और तुरंत ही शुभ यात्रा के लिए तैयारी करने लगे। पत्नी से बोले, शीघ्र ही तैयार हो जाओ और पूजा की सामग्री लेकर आगे आगे चलो। पत्नी को कह रहे हैं आगे आगे चलो। वे पतिव्रता देवी चैतन्य के तत्व को जानती हैं। सुगंध, माला, धूप, वस्त्र, दूध, दही, नवनीत, कपूर इत्यादि पूजा विधि के लिए आवश्यक सब सामग्रियों को लेकर वो चल पड़ी। अद्वैत प्रभु पत्नी को लेकर चले तो सही, परंतु मेरे आने की बात प्रभु से नहीं कहना। फिर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मेरे आने की बात प्रभु से नहीं कहना, ऐसा रामायण को समझा दिया कि मेरे आने की बात नहीं कहना। उन्होंने कहा कि तुम कहना आचार्य नहीं आए, तुम कहना कि आचार्य नहीं आए। क्यों ऐसा कहना? क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। तुम कहोगे, है ना, तो वो तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, वो जानते हैं। तो अभी ये मेरी एक परीक्षा है कि वे भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, अगर तो उनको जो है सब कुछ पता है, है? तो तुम ऐसा बताओ उनको कि आचार्य नहीं आए। देखें तब क्या कहते हैं, मेरे प्रभु मैं तो नंदन आचार्य के घर में छिप कर रहूंगा। तो जा तो रहे नवद्वीप में, नंदन आचार्य के घर में छिप के रहूंगा और बता देना प्रभु को कि आचार्य नहीं आए और तुम वे नहीं आए, ऐसा कहकर प्रचार कर देना। परंतु विश्वम्भर प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है। अतः अद्वैताचार्य का संकल्प उनके चित्त में प्रत्यक्ष हो गया। भगवान वहां नवद्वीप में इसी समय से समझ गए कि अद्वैताचार्य का संकल्प क्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को जो है कुछ अपनी दृष्टि ध्यान करना पड़ता है कुछ की, सब कुछ पता है हर चीज, है ना। तो उनको तुरंत ही संकल्प पता हो गया कि आचार्य का संकल्प क्या है। और नवद्वीप में उनका आगमन जान करके वे तुरंत ही स्वयं श्रीवास पंडित के घर को चले आए। तो भगवान को पता चल गया कि नवद्वीप में आ गए हैं आचार्य, और क्या बोल रहे हैं रमाई को कि बता देना कि आचार्य नहीं आए हैं। और भगवान को पता है आचार्य आ गए हैं, तो श्रीवास पंडित घर में आ गए। तो श्रीवास पंडित के घर में बहुत बड़ा आंगन है और बहुत जो है भक्त लोग बैठ सकते हैं, बहुत बड़ा, अभी भी बहुत बड़ी बाउंड्री है श्रीवास आंगन। तो वहाँ भी जो है सबका मिलन हो पाता है, जितने भक्त हैं सब जो है एक साथ मिल सकते हैं। तो श्रीवास पंडित घर में आ गए भगवान, और चैतन्य प्रभु के जो निज भक्तजन हैं वे भी प्रायः सब प्रभु की इच्छा से वहाँ श्रीवास के घर में आ गए, सब आ गए, है ना। मिस कॉल मिल गया सबको अपने आप, मोबाइल तो नहीं है लेकिन भगवान का मोबाइल ऐसा है, है? सबको मिस कॉल मिल गया, उसी समय सब आ गए, सबको पता चल गया कि भगवान श्रीवास पंडित घर में आ गए हैं, बुला रहे हैं, है? हृदय से जो है भगवान का जो मैसेज है वो आ गया, सबको आ गया, है ना। तो हमारी टेक्नोलॉजी तो बहुत पिछड़ी है भगवान की टेक्नोलॉजी के सामने, है ना। हमारी टेक्नोलॉजी बेकार है, किसी काम की नहीं है भगवान की टेक्नोलॉजी के सामने। तो तुरंत भक्त लोग आ गए। हईला अद्वैत तुष्ट रामे रे बचने, शुभ यात्रा उद्योग करी लत छने, पत्नी रे बाली है बलीला झट हाओ सावधान, लैया पूजार सज्ज चल अगुयान, पतिव्रत सही चैतन्य रे तत्व जाने, गंध माल्य धूप वस्त्र अशेष विधाने। प्रभु आवेश भाव में ये समझकर, प्रभु आवेश भाव में है ये समझकर उन सबको शंका हो रही है और सब चुपचाप रह आए। अब भक्तों को जो है इतना पता चल गया कि भगवान बुला रहे हैं और भगवान अभी आवेश में है, तो किसी को हिम्मत नहीं हो रही भगवान से बात करने की. अब भगवान क्या कहेंगे, भगवान क्या करेंगे, सब भक्त लोग जो है सावधान होकर के देख रहे हैं, बैठे हैं. सब भक्तों को भगवान आवेश में, अब उनको क्या कहना है, क्या करना है, हैं? कुछ पता नहीं किसी को. सब जो है सावधान होकर के जो है बैठे हुए हैं. इतने में देवताओं के नाम नाथ विश्वम्भर प्रभु हुंकार करते हुए विष्णु सिंहासन पर जाके बैठ गए और बार बार कहने लगे, नाढ़ा आ रहा है, नाढ़ा आ रहा है. भगवान बोले, नाढ़ा आ रहा है, नाढ़ा आ रहा है, नाढ़ा मेरी ठकुराई देखना चाहता है, मेरी ठकुराई देखना चाहता है. तो भगवान की जो लीला, जन सामान्य में तो मनुष्य जैसी लीला करते हैं, छन्न अवतार हैं, लेकिन नाढ़ा की इच्छा है ठकुराई देखने की, तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना. नित्यानंद प्रभु के सब संकेत को जानते हैं, समझ गए इस समय प्रभु ऐश्वर्य भाव को प्रकाशित करना चाहते हैं. तुरंत ही छत्र लेकर प्रभु के मस्तक पर धारण कराया. नित्यानंद शेष जी हैं, है ना, तो शेष जी अपने फण से जो छत्र लगाते हैं, यहाँ नित्यानंद प्रभु जो है छत्र लगा के खड़े हो गए भगवान को. गदाधर भाव समझ करके कर्पूर और पान देने लगे भगवान को. गदाधरानी है ना, तो वो पुरुष रूप में गदाधर है. तो और सब भक्त लोग यथा योग्य सेवा में तत्पर हो गए, है ना. सब इस प्रकार से खड़े हैं, इधर खड़े हैं, अपनी पोजीशन ले ली सब भक्तों ने, तो भगवान की सेवा में नाढ़ा मधुचार्य जो है दर्शन करें, इस प्रकार से दर्शन करें, कोई स्तुति पाठ करने हैं, है? सब सेवा कार्य में लग गए. ऐसे समय रमाई पंडित सामने दिखाई दिए. उसके कुछ ना कहने पर प्रभु स्वयं रमाई से कहने लगे. अब रमाई कहते कि आचार्य नहीं आए, उनको कहने का मौका नहीं दिया, है? भगवान स्वयं बोले, मेरी परीक्षा के लिए तो नाढ़ा ने तुमको भेजा है, मेरी परीक्षा के लिए नाढ़ा ने तुमको भेजा है कि तुम मुझसे बोलोगे कि आचार्य नहीं आए, है? और वो वहां पर है. तो भगवान स्वयं कहते हैं, मेरी परीक्षा के लिए नाढ़ा ने तुमको भेजा है क्या, मैं जानता हूं कि वो नाढ़ा आ गया है. ऐसा कहते हुए प्रभु सिर को हिलाते हुए कहने लगे, सब कुछ जान करके भी ये नाढ़ा मुझे हमेशा छेड़ता रहता है. भगवान कह रहे, ये नाढ़ा मुझे छेड़ता रहता है. अब वहां तो नंदन आचार्य के घर में रह गया और तुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए भेज दिया है, तुम जाकर शीघ्र उनको यहां ले आओ, ये मैं प्रसन्न मुख से कह रहा हूं. मैं अपनी प्रसन्नता से आज्ञा दे रहा हूं कि उनको ले आओ आचार्य. और आचार्य की यही इच्छा है कि भगवान जो है मुझको आज्ञा दें, बुलाए, है ना, इतना बुलाए, इतना बुलाए, तो मुझे भी तो एक बार बुलाएं, है ना. तो अपना जो है ये भी दिखा रहे हैं, अपनी शान दिखा रहे हैं. तो आचार्य भी जो है सेवक की भी शान है, कि स्वामी जो है बुलाए. रमाई पंडित फिर बड़े आनंद से चले और जाकर उन्होंने अद्वैत प्रभु को सब वृतांत सुनाया. अद्वैताचार्य सब सुनकर आनंद मग्न हो गए और प्रभु के निकट आए. उनके मन का संकल्प पूरा हो गया. दूर से ही दंडवत प्रणाम करते स्तुति पढ़ते हुए स्त्री के सहित वहां पर आए और निर्भय होकर प्रभु के समीप आ पहुंचे. अखिल ब्रह्मांड विस्मितकारी अद्भुत वेश का दर्शन किया उन्होंने. जैसा चाहते थे वैसा ही, पूर्ण मतलब भगवान का ऐश्वर्य, कैसा उनका शोभा, कैसा दर्शन, कैसा उनका भाव, ईश्वर भाव में है भगवान, सब सबसे ऊपर, सबसे सबके ऊपर उनका जो है शासन है, प्रभाव है, तेज है, इस प्रकार से दर्शन किया. सुनिया आनंद भाषे अद्वैत आचार्य, आईला प्रभु रस्थाने सिद्ध हिला कार्य, दूरे था कि दंड तू करीते करीते, शस्त्री के आये से स्तव पढ़ीते पढ़ीते, आईला निर्भय पद हईला सन्मुखे, निखिले ब्रह्मांडे अपरूप भेष देखे. अब क्या देखा, अब सुनिए बड़े ध्यान से भगवान का ऐश्वर्य, है ना. इसको सुनने से भगवान का जो है ऐश्वर्य भाव आता है, भक्ति भाव, भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा होती है. उन्होंने देखा प्रभु का करोड़ कामदेव विजयी सुंदर लावण्य है, उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेव जैसा. ज्योतिर्मय सुंदर कंचन कलेवर है, ज्योतिर्मय है और कंचन का लेवर, कंचन सोना, सोने जैसा, उसमें भी ज्योति निकल रही है, कंचन कलेवर है और प्रसन्न श्रीमुख करोड़ों चंद्रमाओं का स्वामी है, ऐसा सुंदर मुख है, प्रसन्नता से मानो प्रतीत होता है अद्वैत के प्रति बहुत दयालु है, बहुत दया कर रहे हैं अद्वैताचार्य के प्रति, और करोड़ों कंचन स्तंभ विजयी भुज युगल है, दोनों हाथ जो है करोड़ों जो है सोने के खम्भों की शोभा को भी जीतने वाले ऐसे उनके हाथ हैं, लक्ष्मी देवी चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। अद्वैताचार्य ने देखा, वही देखना चाहिए, लक्ष्मी देवी चरण कमलों की सेवा कर रही हैं, अनंत देव छत्र धारण किए हुए हैं और पैर के जो नाखून हैं वो नाखून है या मणियां हैं पहचाने नहीं जाते, इतने प्रकाश निकल रहा है नाखून से कि नाखून है या मणि है, इतना जो है प्रकाश निकल रहा है पहचाने नहीं जाते। त्रिभंग खड़े हंसते हुए बंसी बजा रहे हैं, भगवान की त्रिभंग की छवि तीन स्थान स्टेण है, बहुत सुंदर भगवान का रूप है ये त्रिभंगी, घुटने से और कमर से और गर्दन से और बंसी बजा रहे हैं ना, क्या तो प्रभु क्या उनके सेवक और क्या आभूषण, सबको अद्वैताचार्य ने ज्योतिर्मय छोड़कर और कुछ नहीं देखा, सब ज्योति, इतना प्रकाश सेवकों में आभूषणों में और भगवान में प्रकाश, और उन्होंने देखा कि चार मुख वाले ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, पांच मुख वाले शिव स्तुति कर रहे हैं, सौ मुख वाले भी देवता हैं चरणों पर पड़े हुए हैं, सुखदेव नारद आदि स्तुति कर रहे हैं भगवान की, गंगा देवी एक सुंदर स्त्री के रूप में मकर वाहन रथ से उतर करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, रथ गंगा जी का है जिसमें मकर जो है घोड़ा नहीं है मगरमच्छ जुता हुआ है, उससे उतर करके उस रथ से उतर कर गंगा जी भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि गंगा जी हैं, अगर रथ को जो है मगर मगरमच्छ अगर चला रहा है तो गंगा जी की सेवा और कोई नहीं हो सकती, मगर वाहिनी है तो गंगा जी पहचान में आती हैं कि मगरमच्छ वाले रथ से उतर करके गंगा जी चरणों में प्रणाम कर रही हैं, फिर देखा कि हजार मुख वाले शेष जी स्तुति कर रहे हैं, चारों ओर से ज्योतिर्मय देवता विद्यमान है, उन्होंने दृष्टि घुमाकर देखा तो अपने प्याऊं के नीचे भी हजारों देवता पड़े हुए कृष्ण कृष्ण कहते दिखाई पड़े उनको, उनके पैरों के नीचे भी हजारों देवता पड़े हुए और कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, केवा ना क्या केवा माणी ना पारे चीनीते त्रिभंगे बजाए बांसी हासीते हासीते, केवा प्रभु केवा गण केवा अलंकार है ज्योतिर्मय वही के छू ना देखी ना ही देखे आ रे, देखे पड़े या चे चारी पंच सत मुख मां भय स्तुति करे नारद आदि शुक। पूजा के समय जिन देवताओं को भी ध्यान किया करते थे आज चारों ओर अपने पांवों के नीचे ही पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर अद्वैत दंडवत प्रणाम को छोड़कर हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए, अभी दंडवत प्रणाम कर रहे थे खड़े हो गए, फिर देखते हैं सात सात फणों वाले महानाग अपने फणों रूपी बाहुओं को उठाकर स्तुति कर रहे हैं, आकाश दिव्य विमानों से भरा हुआ है, पूरा आकाश जो देवता के विमान है तो उनकी पार्किंग आकाश में हो जाती है, यहाँ पर ऐसे कोई प्लेन नहीं है आकाश में पार्किंग हो, तो दिव्य विमान जो है पूरा जो है मतलब भरे हुए हैं आकाश में, आकाश पूरा भरा है विमानों से, और गज हंस अश्वादिकों ने वायु का मार्ग ही रोक दिया है, कोई विमान है जिसमें हाथी चला रहे हैं हाथी जोते हैं, किसी में हंस जोता हुआ है, किसी में घोड़े जोते हुए हैं, पूरा रास्ता ही रोका हुआ है, आकाश का भी रास्ता रोका हुआ है, हाथी इंद्र का वाहन है, हंस ब्रह्मा जी का है, घोड़ा कुबेर का है, तो इन सब के विमान सब देवता अपने अपने वाहनों सहित उस समय आकाश में उपस्थित हैं, और देखा करोड़ों करोड़ों नाग पत्नियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कहकर स्तुति करती हुई विद्यमान है, पृथ्वी आकाश में खाली स्थान नहीं रहा, जमीन पूरी भरी है देवताओं से, आकाश भी पूरा भरा है, देवताओं से महर्षियों के झुंड भी आसपास पड़े प्रणाम कर रहे हैं प्रभु की इस महान ठाकुराई के दर्शन करके पति पत्नी दोनों बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए ओलटिया चाहे ने जय चारण रताले सहस्त्र सहस्त्र देव पाड़ी कृष्ण बोले जय पूजा रे समय जय देव ध्यान करे ता देखे चारी देखे चारण रताले तब परम दयालु विश्वंभर अद्वैत की ओर देखकर बोले तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही मैं अवतीर्ण हुआ हूं अब भगवान स्वयं बोले कि तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करने के ही लिए मैं अवतीर्ण हुआ हूं तुमने मेरी बड़ी भारी आराधना की है मैं क्षीर सागर के भीतर सो रहा था परंतु तुम्हारे प्रेम की हुंकारों से मेरी निद्रा भंग हो गई तुम्हारी निद्रा कहां पहुंची क्षीर सागर में पहुंची और मेरी निद्रा भंग हो गई तुम्हारे प्रेम के हुंकार से और यहां जितना भी शोर करें वहां नहीं जाती हाँ भाई लेकिन प्रेम की हुंकार वहां पहुंचती है तो ये विशेष टेलीफोन है ना प्रेम का तो प्रेम का मोबाइल है प्रेम के मोबाइल से जो है आवाज जाती है वहां जीवों के दुख को देखकर जब तुम नहीं सह सके तो सब जीवों का उद्धार करने के लिए तुमने मुझे बुलाया है चारों ओर तुमने जो सब मेरे गण देखे हैं इन सब का जन्म तुम्हारे कारण ही हुआ है कौन नित्यानंद है अद्वैताचार्य गदाधर पंडित हैं श्रीवास हैं जितने भी हैं तुम्हारे कारण इन सब का जन्म हुआ है जिन वैष्णवों के दर्शन की ब्रह्मा भी मन में कामना करते हैं उनको तुम्हारे कारण अब सब लोग देख पाएंगे ये वैष्णव भी सामान्य नहीं है ब्रह्मा जी भी कामना करते हैं तो मारे संकल्प लागी अवतीर्ण आमी विस्तर आमार आराधना कैले तुमी सुतिया आछिलु क्षीर सागर भीतरे निद्रा भंग मोर तोर प्रेमे रे हुंकारे महाप्रभु के इन वचनों को सुनकर श्री अद्वैत भुजा उठाकर स्त्री सहित रोने लगे और कहने लगे आज ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ है आज ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ है दिन का प्रकाश अगर हो तो ऐसा हो ऐसा दर्शन हो कारण कि आज मेरी समस्त अभिलाषाएं सफल हुई आज मेरे जन्म कर्म सब सफल हुए जो आज मैंने आपके चरणों के साक्षात दर्शन किए जिनकी घोषणा मात्र ही वेद करते हैं वेद तो केवल घोषणा करते हैं परंतु जिनको देख नहीं पाते ऐसे आप मेरे लिए प्रत्यक्ष गोचर हुए हैं आप प्रकट हुए ये मेरी शक्ति से नहीं ये तो केवल आपकी करुणा है अद्वैताचार्य नहीं मानते कि मेरी शक्ति से आपकी करुणा है भगवान के तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मैं आया बन करके लेकिन अद्वैताचार्य के मेरे अंदर तो कहाँ प्रेम है आपकी ही करुणा है आपकी करुणा है आपके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है इस प्रकार कहते कहते आचार्य प्रेम में बह चले तब प्रभु बोले मेरी पूजा का कार्य करो प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य देव महान हर्ष के साथ श्री चरणों की पूजा करने लगे पहले सुगंधित जल से चरण कमलों को धोया गंध लेपन किया दिव्य तुलसी की मंजरी को चंदन में डुबाकर चरण कमलों पर चढ़ाया गंध पुष्प धूप दीप आदि पंचोपचार से चरणों की जब पूजा कर रहे थे तो नेत्रों से प्रेम जल की महाधाराएं बह रही थी फिर पांच बत्ती जलाकर प्रभु की आरती उतारी पंचदीप यहां भी होता ना पंचदीप आरती उतारी प्रणाम किया अंत में जय जयकार ध्वनि करने लगे फिर षोडश उपचार से चरणों की पूजा करके दोबारा माला वस्त्र और आभूषण अर्पण किए पांच रात्र की विधि के अनुसार पूजा करके श्लोक पढ़ते हुए दंडवत प्रणाम किया अब श्लोक क्या है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः आज से सफल मोर दिन पर काश आज से सफल कई लो जत अभिलाष आज मोर जन्म कर्म सकल सफल साक्षात देखिलो तोर चरण योगल घोषे मात्र चारी वेद जारे नाई देखे हे न तुम मोरे लागे हैला पर देखे श्लोक पढ़कर के नमस्कार किया फिर स्तुति करने लगे हे सर्व प्राणनाथ विश्वंभर आपकी जय हो हे करुणा सागर गौरचंद्र आपकी जय हो हे भक्तों के वचन सत्य करने वाले आपकी जय हो हे महा अवतारी महाप्रभु आपकी जय हो हे लक्ष्मी के मन विनोदकारी रूपधारी आपकी जय हो, जय हो। हे श्रीवत्स और कौस्तु मणि से विभूषित आपकी जय हो, जय हो। हरे कृष्ण मंत्र के प्रकाशक आपकी जय हो, जय हो। अपनी भक्ति अर्थात साधन भक्ति अथवा प्रेम भक्ति को स्वयं ग्रहण करने वाले आपकी जय हो। हे शेष साई महाप्रभु आपकी जय हो, जय हो। हे सर्व जीवों के आश्रय आपकी जय हो, जय हो। आप विष्णु हो, आप कृष्ण हो, आप नारायण हो, आप मत्स्य हो, आप कूर्म हो, आप सनातन हो, आप वराह प्रभु हो, वामन भगवान हो, आप युग युग में वेदों की रक्षा करते हो, आप राक्षस कुल का नाश करने वाले जानकी जीवन श्री राम हो, आप निषाद राज गुह को वरदान देने वाले और अहल्या के उद्धार करता हो, आपने प्रहलाद के लिए अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया तब आपका ही नाम नरसिंह पड़ा। हे द्विजराज आप ही सब देवताओं के चूड़ामणि हैं, आप ही नीलाचल में जगन्नाथ रूप में भोजन करते हो, आपको ही चारों वेद ढूंढते फिरते हैं किंतु आप यहाँ आकर छिपे बैठे हो। चारों वेद आपको ढूंढते फिरते हैं और आप यहाँ छिपे बैठे हो। छिपने में आप बड़े धीर वीर हो परंतु भक्तजन आपको ढूंढकर प्रकाशित करते हैं। आपका अवतार संकीर्तन प्रारंभ करने के लिए ही हुआ है, अनंत ब्रह्मांडों में आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जो आपके युग चरण कमल हैं इनके रसास्वादन में गौरी शंकर बेहवल रहते हैं, ये वही चरण हैं जिनकी लक्ष्मी जी एकाग्र चित्त से सेवा करती हैं और इन्हीं के यश को हजार मुख वाले शेष नित्य गाया करते हैं। इन्हीं से चरणों की सदा ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, इनके ही तत्व को श्रुति स्मृति पुराण सब वर्णन करते हैं। इन्हीं श्री चरणों ने सत्यलोक का आक्रमण किया था, इनके अर्पण करने से राजा बलि का सिर धन्य हुआ था, इन्हीं से चरणों से गंगा जी का अवतरण हुआ जिनके वेग को महादेव जी अपने शीश पर धारण करते हैं। ए तो रदो ये खाने चरण कमल इे से रस गौरी शंकर बेहवल ऐसे चरण रामा सेवे एक माने इे से यश गाय सहस्र वदने इसे चरण ब्रह्म पूजाए सदाय श्रुति स्मृति पुराण ए हरि तत्व गाय सत्य लोक आका मिले ऐसे चरण बालेश्वर धन हैला इे अर्पण। अधोचार्य की बुद्धि करोड़ों बृहस्पति को जीतने वाली है। जब स्तुति करें तो क्या बोलते हैं, करोड़ों बृहस्पति भी ना बोल पाए ऐसी स्तुति करते हैं। चैतन्य देव के तत्व को भली भांति जानते हैं, चरण स्तुति करते हुए उनका मुख नेत्रों के आंसुओं से भीग गया, चरणों के तले लंबे होकर पड़ गए। कैसे लंबे? डंडा के समान, एक पूरा डंडा बना दिया अपने शरीर का। सर्व प्राणियों के अंतर्यामी श्री गौरांग ने अपना चरण उठाकर अद्वैत के सिर पर रख दिया। यही चाहते थे ना कि अपना चरण सिर में रखें, नहीं तो कैसे रखेंगे? भगवान थोड़ी अपना चरण किसी के सिर में रखते हैं। अद्वैत चार्य की तीव्र अभिलाषा थी कि स्वयं अपने चरण उठा करके रखें, है ना। तो जैसे पड़े भगवान ने चरण अपना सिर में रख दिया। शीश पर चरण अर्पण करते ही जय जय महाध्वनि होने लगी। इस अपूर्व चरित्र को देखकर कि कल तक तो अद्वैत के चरण पकड़ते थे, अभी तक तो जिनके चरण पकड़ते थे स्वयं भगवान, अभी क्या कर रहे हैं? अपना चरण उनके सिर में रख रहे हैं। अपूर्वता देखकर सब बेहबल हो गए, हरि हरि कहते हुए कोलाहल करने लगे। हरि हरि, कोई भूम पर लोटपोट होने लगा, कोई ताल ठोंकते हुए उछलने लगे और कोई किसी को गलकंठ करके जोर जोर से रोने लगे। प्रेम में जो है भक्तों का ये हाल हुआ। अपने पूर्व संकल्प के अनुसार श्री चरणों को अपने मस्तक पर प्राप्त करके अद्वैताचार्य स्त्री सहित पूर्ण मनोरथ हो गए। बस अब कुछ नहीं रहा, अब कुछ भी नहीं चाहते हैं, सब कुछ हो गया। तब प्रभु विश्वंभर अद्वैत को आज्ञा करते हुए बोले, ओ नहड़ा मेरे कीर्तन में नृत्य करो। भगवान कहते हैं अब तुम मेरे कीर्तन में नृत्य करो। प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य वहीं पर नाना प्रकार के भक्ति भावों को प्रकट करते हुए नृत्य करने लगे, कीर्तन के अति मनोहर ध्वनि होने लगी। आचार्य गौर प्रभु के सम्मुख नृत्य करने लगे, एक क्षण में तो जोरदार नृत्य करते, दूसरे क्षण में मधुर नृत्य करते, फिर दांतों में बहुत से तिनकों को उठा लेते हैं, दांतों में तिनका उठाते हैं, क्षण क्षण में उठते हैं, क्षण क्षण में गिर कर लोटपोट हो जाते हैं, क्षण में लंबी सांस लेते हैं, क्षण में मूर्छित हो जाते हैं, जिस समय जो कीर्तन सुनते उसी समय वैसे ही हो जाते, एक भाव में स्थिर नहीं रह पाते, आनंद में बहे जा रहे हैं, अंत में केवल दास भाव में अविष्ट हो गए। दास भाव का प्रभाव अचिंत है, समझ में नहीं आ सकता, दास भाव में आ गए। उठीला कीर्तन ध्वनि अति मानो हारे नाचे न अद्वैत गौरे चंद्रे रे गोचारे छणे वा विस्थाल नाचे छणे वा माधुर छणे वा दसा नेत्रण कर प्रचुर छणे छणे उठे छणे पड़ी गाणी जाए छणे घन स्वास्थ्य भय छणे मूर्छा पाए। अद दौड़ दौड़ कर महाप्रभु के पास जाते हैं। श्रीवास आंगन जो है बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो काफी दूर जाते हैं दौड़ करके, फिर दौड़ करके आते हैं महाप्रभु के पास में है? और नित्यानंद को देखकर भौहें टेढ़ी करके हंसते और कहते अच्छा नेताई तुम आ गए, इतने दिन तक तुम्हारा पता नहीं था, अब जाओगे कहाँ, आज तो तुमको बांध कर रखूंगा। नित्यानंद को बोलते हैं अब तुम कहाँ जाओगे है? तुम्हारा पता नहीं था इतने दिनों से है? बड़े चोर हो तुम है, अब तुमको बांध के रखूंगा। क्षण में तो नेताई से प्रभु कहकर बोलते और क्षण में मतवाला कहते कि मतवाला है। तो अद्वैत के चरित्रों पर नित्यानंद हंसने लगे। श्री कृष्ण की गौर लीला में ये दोनों एक ही मूर्ति के दो भाग हैं। जैसे एक ही मूर्ति दो हिस्से में हो गई, श्री चैतन्य के जो है दोनों प्रेमी अद्वैताचार्य और नित्यानंद। श्री अद्वैत महाविष्णु है और महाविष्णु मूल संकर्षण नित्यानंद के अंश हैं। अतः नित्यानंद मूल भाग हैं, अद्वैत अंश भाग हैं। किसी रूप में चैतन्य गुण कहते हैं, किसी रूप में ध्यान करते हैं, किसी रूप में छत्र और सैया हैं, तो किसी रूप में उनका गुणगान करते हैं। नित्यानंद अद्वैत में भेद रहित प्रेम जानना है। ऐसा जो इनके परस्पर अभिन्न प्रेम को इस अवतार में जानता है वही भाग्यवान है। इन दोनों में कुछ कलह लीला देखने में आती है, वो ईश्वर के व्यवहार के कौतुक विनोद हैं। कभी अगर नित्यानंद के साथ में झगड़ा करते हैं तो प्रेम व्यवहार का कौतुक है, प्रेम का कौतुक है, अचिंत्य है, बुद्धि की अगम्य है। इन दोनों की प्रीति ऐसी है जैसे शेष और शंकर की परस्पर प्रीति है। दोनों ही श्री कृष्ण के लिए कलेवर हैं। जो इस तत्व को ना समझकर दोनों की कलह पक्ष को लेता है, एक की वंदना दूसरे की निंदा करता है, वो महाअपराध के कारण विनाश को प्राप्त होता है। अद्वैत के नृत्य को देखकर सब वैष्णव आनंद सागर में डूब गए। तब अद्वैत के लिए वहीं ठहर जाने की आज्ञा दी प्रभु ने कि आज यहीं पर ठहरो। उस आज्ञा को सरोधार करके उन्होंने नृत्य बंद कर दिया। महाप्रभु ने अपने गले की माला उनको देकर हंसते हुए कहा वर मांगो। भगवान क्या बोले, वर मांगो, वर मांगो। अद्वैताचार्य ने सुनकर भी कुछ उत्तर नहीं दिया। प्रभु विष्णु बार बार मांगो मांगो कहते कि मांगो मांगो। अद्वैताचार्य कुछ बोल नहीं रहे, भगवान के वर मांगो वर मांगो। अंत में अद्वैताचार्य बोले मैं अब क्या वर मांगू, मैंने तो जो वर चाहा था वो संपूर्ण पा ही लिया है। जब आपका साक्षात्कार करके आपके सामने नाच लिया तो मन के मनोरथ पा चुका, अब और क्या चाहिए। आपके सामने नृत्य कर लिया मैंने तो पूरा मनोरथ हो गया। साक्षात आपके अवतार के दर्शन कर लिए तो अब क्या मांगू, अब रह भी किया गया मांगने को, क्या इस बात को आप नहीं जानते हैं कि मैंने क्या चाहा था, आपके दिव्य दर्शन में मैंने क्या नहीं देखा है। तब प्रभु विश्वम्भर सिर हिलाते हुए बोले तुम्हारे निमित्त ही मैं प्रकट हुआ हूँ, मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूँगा जिससे कि मेरे यश को गाकर सारा संसार नाच उठेगा। ब्रह्मा शिव नारद जिस भक्ति के लिए तपस्या करते हैं ऐसी भक्ति मैं सबको लुटाऊंगा। हरि बोल। फ्री में लुटाऊंगा ये मैं तुमसे कह देता हूं। अद्वैताचार्य बोले यदि भक्ति आप लुटावे तो स्त्री शूद्र मूर्ख नीच सबको प्रदान कीजिए। यहां सब ऐसे तो हैं है? स्त्री शूद्र मूर्ख नीच है? इन सबको प्रदान कीजिए। जो लोग विद्या धन कुल तपस्या के अभिमान में भक्त और भक्ति को बाधा पहुंचाएं वे सब पापी लोग देख देख करके जल मरे। जो भक्तों और भक्ति की निंदा करते हैं है? अपने विद्या कुल के अभिमान में कि हम बड़े कुलीन हैं, हम बड़े विद्वान हैं, तो वे देख करके जल मरे। चांडाल भी आपके नाम और गुण को गा गा कर नाचे। अद्वैत प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु ने हंकार पूर्वक कहा तुम्हें जो स्वीकार है वही ही होगा, वैसा ही होगा। भगवान कहते हैं वैसा ही होगा। अद्वैते रेवा के सोने कारी लाहुंकार प्रभु बोले सत्य जे तुम्हारे अंगीकार। इन सब बातों का साक्षी सारा संसार है। मूर्ख और नीचों पर भी प्रभु की विशेष कृपा हुई, प्रभु के गुणों को गा गाकर चंडाल आदि तो नाचे और भट्ट मिश्र चक्रवर्ती केवल निंदा करना ही जानते रहे। जो बड़े बड़े भट्ट मिश्र चक्रवर्ती थे केवल निंदा करना ही जानते रहे, ग्रंथ पढ़कर शीश मुड़ाकर किसी को तो बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि वे अपने सर्वनाश के लिए नित्यानंद प्रभु की निंदा करते रहे। अधोचार्य की प्रार्थना पर जगत को प्रेम प्राप्त हुआ, ये सब कथा इस खंड में कही गई। श्री चैतन्य देव अद्वैत प्रभु में जितनी कुछ प्रेम वार्ता हुई वो सब सरस्वती देवी जानती हैं। वही देवी सब जनों की जीवा पर श्री शेष के समान होकर चैतन्य चंद्र का यश गान करती हैं। समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा नमस्कार है। ये बात कौन कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर के। समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा नमस्कार है, उनके चरणों में मेरा कोई अपराध ना हो, यही हमारी कामना। क्या? कि वैष्णवों के चरणों में मेरा कोई अपराध ना हो। इस प्रकार आचार्य स्त्री से बड़े आनंद को प्राप्त हुए और मन वांछित फल पाकर वहीं ठहर गए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद मेरे जीवन प्राण हैं, उनके चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूँ। सर्व वैष्णवे रे पाए मोरे नमस्कार, इते अपराध के चुनाव के आमार, शस्त्र के आनंद हिला आचार्य गोसाई, अभी मत पाइया रहिला से ठाई, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पदे जोगे गान। इस प्रकार से हमने एक अध्याय आपको पढ़ करके सुनाया है, तो मैंने नहीं सुनाया, वृंदावन दास ठाकुर ने सुनाया आप लोगों को। पूरा 9 बज गया। अभी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न, कुछ चर्चा, जब मैं प्रश्न करूं। हाँ जी, क्या नाढ़ा? हाँ, नाढ़ा का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? नाढ़ा भगवान बोलते हैं ना आचार्य को, है? हाँ, वृद्ध को, वृद्ध को जो है नाढ़ा बोलते हैं, है ना? ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी, इसके पहले मिशन नहीं पर्दा। हाँ नहीं, अद्वैचार्य इस समय जो है मनुष्य के भाव में है और सेवक के भाव में है अद्वैचार्य, है ना? और वो ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान के और जितने भी विष्णु तत्व हैं वे भी कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। तो एक ये तत्व, ये गहरा तत्व है। अद्वैताचार्य अभी मनुष्य भाव में लीला कर रहे हैं और विशेष रूप से वो हमें भक्ति सिखा रहे हैं, वे भक्ति के आचार्य हैं, है ना? तो स्वयं आचरण करके हमें भक्ति सिखा रहे हैं, है ना? और श्री चैतन्य को जो है केंद्र में रख करके वे भक्ति सिखा रहे हैं, तो ये भी दिखा रहे हैं। तो ये गहरा तत्व है कि जो विष्णु तत्व है वो भी कृष्ण के प्रति जो है आकर्षित होते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, बचपन से देखते थे और उनको संकेत मिलते भी थे, है ना? लेकिन अगर भगवान नहीं चाहते अपने को प्रकट करें तो वो भी चुप थे, लेकिन जब भगवान अब संकीर्तन उन्होंने शुरू कर दिया, संकीर्तन शुरू कर दिया उन्होंने, है? तो अब जो है वो चाहते हैं कि वे ईश्वर भाव में वो आए और मेरे पैर ना छुएं। तो भगवान जो है भक्त के भाव में अद्वैचार्य के हमेशा चरणों की वंदना करते हैं, अपना सिर उनके चरणों में, तो वे जो है इस बात से बड़े असंतुष्ट रहते हैं। और अब जो है उनकी जो अभिलाषा है, अभिलाषा यही है कि वो सेवक की तरह मुझे क्यों नहीं व्यवहार करते हैं, मैं उनका सेवक हूँ, तो उनकी बहुत अभिलाषा है ना? तो जो भगवान है वो स्वयं जो है सेवक बनना चाहते हैं, और ये यहाँ जो मूर्ख लोग हैं ये भगवान बनना चाहते हैं, है ना? यहाँ के जो लोग हैं इतने मूर्ख हैं वो भगवान बनना चाहते हैं, है ना? तो सेवा की भावना जो है कितनी श्रेष्ठ है, है? तो भगवान बनने से क्या होगा, माया की लातें खाओगे, है? माया कहेगी हाँ भगवान बन जाओगे तुम, भगवान बन जाओगे, और लातें मारती रहेगी लगातार, है ना? अब तुम भगवान बन गए, अब तुम भगवान बन गए, हाँ हाँ बस बस अब भगवान बन गए, और लातें मारती रहेगी, लातें मारती रहेगी, है ना। तो भगवान बनना चाहते हो तो इस तरह से हाल होगा, दुर्गति होगी। और सेवा सेवक बनना चाहते हो तो सीखो आदराचार्य कैसे सेवा करना चाहते हैं भगवान की, है ना। उनकी कामना है कि भगवान अपने चरणों में, अपने चरणों को मेरे सिर में रखें, है। ये कामना हो गई तो जीवन सफल हो गया, सुरक्षित हो जाओगे, है ना। और नहीं तो माया की लातें खाओगे। भगवान के चरण अगर सिर में आ गए तो माया की लातें बंद हो जाएंगी, तो माया की लातें खाओ, है ना। धन्यवाद। श्री लद्दाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।